बीजेपी नॉर्थ ईस्ट जीतना चाहती है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहां पर चर्चाएं कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भाजपा के अलावा राजनीतिक दलों की ओर से भी आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग बहुत तेज हो चुकी है। नागालैंड की बात की जाए तो ईसाई आबादी भारी मात्रा में है, ऐसे में एक चर्च की तरफ से कहा गया है कि लोग त्रिशूल और क्रॉस इनमें से किसी एक को चुने। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर सुजीत नायर जी होंगे, हम इस विषय पर उनसे सविस्तर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसे जो स्टेटमेंट है वो क्यों सामने आ रहे हैं चुनाव से पहले। सर, सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं?
सी, कम्युनलिज्म जो है ना, कम्युनलिज्म कोई यू नो इट्स आज जो हिसाब से इंडिया में कम्युनलिज्म देखा जा रहा है वो इस तरह से देखा जा रहा है कि हिंदू कम्युनलिज्म देखा जा रहा है, दैट मीन्स हिंदुत्व का जो कम्युनलिज्म है उसके हिसाब से देखा जा रहा है। ठीक है, वो होगा भी, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि वो नहीं है, ऑफकोर्स है, लेकिन हिंदू कम्युनलिज्म उतना ही गलत है जितना क्रिश्चियन कम्युनलिज्म गलत है, जितना इस्लामिक कम्युनलिज्म गलत है। देखिए, देश की बात हो तो रिलीजन इंपॉर्टेंस नहीं रखता, देश का हित इंपॉर्टेंट रखता है। तो देश के हित में जो आदमी काम करेगा वोट उसको जाना चाहिए, ना कि जो हमारे समुदाय का आदमी है, हमारे कास्ट का आदमी है, हमारे रिलीजन का आदमी है। तो अगर वो को अगर एक हिंदू बोलता है कि भाई मैं इसको वोट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू है इसलिए मैं उसको वोट दे रहा हूँ, तो वो कम्युनल है। बट एक क्रिश्चियन भी अगर वो बोलता है कि भाई ये क्रिश्चियन का आदमी है, ये क्रिश्चियन है इसलिए मैं इसको वोट दे रहा हूँ, तो वो भी कम्युनल है। और एक इस्लाम का एक मुसलमान ये बोलता है कि भाई मैं इसको वोट दे रहा हूँ क्योंकि वो मुसलमान है, तो वो भी कम्युनल है। तो कम्युनल जो है ये हर एक जाति हर एक समुदाय को लागू है। रवि, मेरा प्रॉब्लम ये पूरे केस में ये है कि क्या होगा अगर आज एक चर्च ने, सी नॉर्मली चर्च नहीं बोलते ये, ओके वन हैज टू, ये एक स्ट्रे केस है तो पहले बात तो ये क्लियर करें, नॉर्मली चर्चेस ऐसे नहीं बोलती, लेकिन अगर एक चर्च ऐसा बोलता है या एक मंदिर ऐसा बोलता है जाए या एक मस्जिद ऐसा बोलता है कि भाई देखो तुम इनको वोट करो, इनको वोट ना करो, या तुम इनको वोट करो, तो अगर कल क्रिश्चियन चर्च ने बोला कि भाई ये त्रिशूल और क्रॉस के बीच में है तो आप डिसाइड करो त्रिशूल को वोट करना है क्रॉस को वोट करना है, मुझे लगता है वो बात कर रहे हैं बीजेपी की और बाकी पार्टी की, जो भी पार्टी की वो बात कर रहे हैं वो, तो बीजेपी को शायद उन्होंने त्रिशूल बोला है और बाकी जो पार्टी है उनको क्रॉस बोला है। अब सोचो कि अगर हिंदू जमा हो गए और बोले कि भाई आप वोट करो कि हमको आपको देखना है कि आप क्रॉस को वोट करना है कि त्रिशूल को वोट करना है, फिर इस्लामिक बोलेगा कि भाई आपको इनको वोट करना है कि कोई और को वोट करना है। अगर हर एक कम्युनिटी, हर एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च अगर ये चालू कर दिया तो इंडिया कहाँ जाएगी? देश के हित में कौन सोचेगा? आप क्रिश्चियन के हित में सोचते हो, मैं हिंदू के हित में सोचता हूँ, कोई और इस्लाम के हित में सोचेगा? अरे भाई, देश के हित में कौन सोचेगा? तो ये मुझे डर है। और ये जो हम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं इसलिए हिंदुओं के हित के सोचूंगा, मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं मुसलमान के हित में सोचूंगा, मैं क्रिश्चियन हूँ मैं क्रिश्चियन के हित में सोचूंगा, या मैं दलित हूँ तो दलित के हित में सोचेगा, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए अपने समुदाय के बारे में, लेकिन देश के हित से ज़्यादा नहीं। तो ये सुनकर, ये पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज अगर ये डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी सैड। और जो भी वो करता हो, हिंदू अगर करता हो तो गलत है, मुसलमान करता हो तो भी गलत है, क्रिश्चियन भी करता हो तो भी गलत है। सो कम्युनलिज्म किसी एक आदमी का जायदाद नहीं है। कम्युनलिज्म अगर क्रिश्चियन करता हो वो भी कम्युनलिज्म है, हिंदू करता हो वो भी कम्युनलिज्म है, और मुसलमान करता हो वो भी कम्युनलिज्म है। इस मामले में, ये स्पेसिफिक केस में, ये जो चर्च ने किया है वो कम्युनलिज्म है और इसको हम एग्री करना चाहिए और इसको हम मानना चाहिए कि ये कम्युनलिज्म है।
सर, जो लेटर उन्होंने लिखा है, सभी जो अध्यक्ष पार्टियों के उनको लेटर लिखा गया है, उसमें लिखा है कि आरएसएस समर्थित भाजपा के भाजपा ने अल्पसंख्यकों के हितों का पोषण नहीं किया हुआ है, तो अल्पसंख्यक भाजपा से मुंह मोड़ें और जाके त्रिशूल को वोट करें। गुजरात के चुनाव के टाइम पे भी एक ऐसे ही एक बयान निकल कर सामने आया था। तो सर, ये क्या कम्युनल रंग देने की क्यों कोशिश की जा रही है हर चुनाव को? अगर आपको बीजेपी को हराना है, बीजेपी को अगर आपको वो करना है, तो कम्युनल रंग देकर आप क्यों बीजेपी को हराना चाहते हैं?
देखिए, बीजेपी ने ये कुछ कम नहीं खेला है, बीजेपी ने कम्युनलिज्म बहुत खेला है। तो बीजेपी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। बट दैट बींग सेड, ये जो ट्रेंड आ रहा है, ये जो ट्रेंड आ रहा है कि यू नो कोई मस्जिद से या कोई मंदिर से या कोई गुरुद्वारे से या कोई चर्च से ऐसे ऐसे सब क्लैरियन कॉल्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि भाई आप ये इस फलाना पार्टी को वोट करो या डिमकाना पार्टी को मत वोट करो, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो रीत है जो अभी एक नए ये पकड़ा, वो बहुत ख़राब है, इट इज़ वेरी बैड फॉर द कंट्री। और मैं ये बोल रहा हूँ इससे सिर्फ कम्युनलिज्म बढ़ेगा। और मैं आपको एक कैटेगोरिकली बता दूँ, अगर ये हुआ तो चांसेस आर, अगर ये 2019 में ये बड़े पैमाने पे हुआ कि हर चर्च ने बोला कि भाई बीजेपी को मत वोट दो, हर मस्जिद ने बोला कि भाई बीजेपी को मत वोट दो, तो शायद बीजेपी का जीतने का चांसेस ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि क्या कर रहे हो आप हिंदू को सब कंसोलिडेट करने में फोर्स कर रहे हो, तो आप एक्चुअली हेल्प कर रहे हो हिंदू कंसोलिडेट होने का, हिंदू
एकजुट होने लगते हैं,
फिर वो हिंदू वर्सेस अदर्स हो जाता है। भाई हमारे देश में इसकी जरूरत नहीं है यार, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हिंदू वर्सेस अदर्स की इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम पहले कैसे जीते थे, क्या आपको अपने ऑफिस में कितने हिंदू है कितने मुसलमान है, क्या आपको मालूम है आप किसके पार्टी में जाने से पहले या किसके डब्बे से खाना खाने से पहले आप उसको पूछते हो भाई आपका जात क्या है। भाई कहाँ ले जा रहे हैं हम अपने देश को, कहाँ ले जा रहे हैं हम हमारे देश को। ओके सी, एक हिंदुओं का पार्टी हो तो वो पार्टी का पहला कर्तव्य ये बनता है कि क्रिश्चियंस और मुसलमान और बाकी समुदाय की सेफ्टी का वो ख्याल रखे। और एक मुसलमान का अगर पार्टी हो, एक मुसलमान हो तो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर एक हिंदू, हर एक मुसलमान, हर एक क्रिश्चियन, उसका उतना ही उसका जवाबदारी है जितना उसके मुसलमान भाई है। तो इसमें ये हिंदू मुसलमान कहाँ आया, ये इंटरेस्ट देश का इंटरेस्ट होता है, हिंदू का इंटरेस्ट और मुसलमान का इंटरेस्ट होकर देश नहीं चला सकता। क्या आप करोगे, आप बोलोगे कि रेलवेज में कल के बाद हिंदू ही काम करेगा मुसलमान नहीं काम करेगा, क्या आप बोलोगे ONGC में सिर्फ मुसलमान काम करेगा और हिंदू और क्रिश्चियंस काम नहीं करेगा, और क्या आप बोलोगे कोई PWD डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब्स में अभी सिर्फ मुसलमान को लेंगे हिंदू और क्रिश्चियंस को नहीं लेंगे, ये हो नहीं सकता राइट। अगर कोई भी होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, अगर एक डेवलपमेंट होता है तो वो हिंदू के लिए भी होता है, मुसलमान के लिए भी होता है, सिख के लिए भी होता है, ईसाई के लिए भी होता है, ये सब के लिए साथ में होता है। बट द पॉइंट इज आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि भाई आप ठीक है कोई किसी को कम किसी को ज़्यादा उसका फायदा होता है, तो आप ये डेफिनेटली रेगुलेट करने की कोशिश करते हो आपके समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव से कि भाई अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा है या किसी को उसका उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए तो समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आके हस्तक्षेप करके उसको करेक्ट करना चाहिए। ये बात से कोई परहेज भी नहीं है और अच्छी बात है ये, लेकिन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को, MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर आप चुनोगे क्योंकि वो मुसलमान है और हिंदू है और वो सिख है तो भाई ये कंट्री नहीं चलेगा। बिकॉज ऐसा कोई भी जगह नहीं है ये भारत,
हर राजनेता यही कर रहा है, कम्युनल रंग खेल रहा है।
एब्सोल्युटली मैं आपको लिख के देता हूँ, आज भारतवर्ष में एक भी जगह ऐसा नहीं है, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा नहीं है, शायद मे बी फ्यू एक दो ऐसा होगा लेकिन 99% एक भी ऐसा एटलीस्ट पार्लियामेंट्री सीट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां सिर्फ हिंदू है या सिर्फ मुसलमान है या सिर्फ क्रिश्चियंस है। परसेंटेज जरूर कम होगा, परसेंटेज ये कम होगा, लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर हिंदू है और सिर्फ मुसलमान है और सिर्फ सिख है या सिर्फ ईसाई है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। एक दूसरी बात देखें, अगर मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर हूं, अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, मेरा ये फर्ज बनता है कि हर एक आदमी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो मेरा जिम्मेदारी है, रिगार्डलेस ऑफ वॉट हिज रिलीजन इज, रिगार्डलेस ऑफ वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो ये सब बात है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली रवि दुख इस बात की है कि अगर मंदिर मस्जिद और गिरजाघर अगर पॉलिटिक्स में अगर आ जाए और इन लोग पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने लगे तो मैं ये बोलूँ ये कंट्री के लिए एक रेड अलर्ट का साइन है, रेड अलर्ट का साइन है।
ऐसे में तब जब मंदिर के पुजारी, मस्जिदों के मौलाना, गिरजाघर के पादरी इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं,
वही तो मैं जब बोलो अगर इन लोग जैसे लोग जो लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए अगर वो लोगों को तोड़ने का काम करे तो फिर ये देश का बहुत बहुत नुकसान होता है। और मुझे बहुत 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 एक आई एम गेटिंग अ वेरी बैड फीलिंग अबाउट दिस। देखिए जब तक पॉलिटिशियंस करता है तब तक मैं फिर भी मानूंगा कि वो पॉलिटिशियंस है, वो खुद के लिए काम करता है, वो खुद के बेनिफिट के लिए काम करता है, वो खुद के अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक जो भगवान का जो एक आदमी है, एक पादरी हो या एक पुजारी हो या वो समुदाय के लिए काम करता है और वो ये पूरे विश्व के लिए काम करता है। ओके एटलीस्ट दैट इज़ वॉट ही सपोज टू डू। और वही अगर आदमी जोड़ने के सिवा तोड़ने का कोशिश करे, तोड़ने चालू करे तो रवि ये बहुत डेंजरस है।
सर मेरे पास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी और सवाल बाकी है, लेकिन सर एक सबसे बड़ा जो कि हम सवाल करें, जो कि सर मैं सीधा पूछना चाहूँगा, अगर बीजेपी को वोट दे दिया जाए तो क्या ईसाइयत खतरे में आ जाएगी?
देखिए मैं एक बात बोलूँ आपको, बीजेपी को वोट दे के खतरे में आएगी नहीं खतरे में आएगी मुझे नहीं मालूम। द पॉइंट इज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो ये कंट्री में, कोई भी आदमी, एक ईसाई एक मुसलमान, जो मैंने एडिटोरियल में भी मैंने बोला है काफ़ी बार, एक ईसाई एक मुसलमान एक हिंदू एक सिख, ये इतना ही इंडिया का पार्ट है, इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना के कोई और है। एक हिंदू उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना के मुस्लिम, एक मुस्लिम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना के एक सिख इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना के वो ईसाई इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी पार्टी अगर चाहे, भारत से जब तक भारत के लोग नहीं चाहेंगे, भारत के लोग नहीं चाहेंगे, कोई भी समुदाय खतरे में नहीं हो सकता। एक दूसरी बात देखें, भारत के लोग, हमारे खून में ना सेक्युलरिज्म है, हमारे खून में सेक्युलरिज्म है, भारत के खून में सेक्युलरिज्म है। क्या हुआ, ब्रिटिश ने तोड़ना चाहा मुसलमान को, पाकिस्तान बनाया, कितना मुसलमान, भारत के मुसलमान ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, वो बोला नहीं हम सेक्युलर स्टेट में रहेंगे, ये भारत के मुसलमानों ने किया। क्यों? क्योंकि भारत के मुसलमानों के खून में सेक्युलरिज्म है।
कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसको अलग अलग रंग दे रहे हैं।
एब्सोल्युटली हिंदू ने इंडियन मुसलमान को अपने भाई जैसे एक्सेप्ट किया। ओके और इंडियन मुसलमान का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होते रहा इंडिया में। ओके और बहुत अच्छे से ग्रो होते रहा पॉपुलेशन। हिंदू का पॉपुलेशन पाकिस्तान में कुछ 18% था और अब 2% है। मुसलमान का पॉपुलेशन इंडिया में कुछ 4 या 6% था, अब 20% 22% है। ओके तो इंडिया में मुसलमान का पॉपुलेशन ग्रो होते रहा, पाकिस्तान में मुसलमान का पॉपुलेशन कम होते रहा। ग्रो क्यों हुआ? ग्रो इसलिए हुआ बिकॉज मुसलमान हिंदू के साथ प्रॉस्परस था, दोनों साथ में अपना देश बनाए। ओके एक मुसलमान ने इतना ही कंट्रीब्यूट किया है भारतवर्ष के प्रोग्रेस के लिए जितना एक हिंदू ने किया, जितना एक ईसाई ने किया, जितना एक सिख ने किया। और ये मैं कोई जुमला नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। अगर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगर अब्दुल कलाम अगर वो नहीं होते तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होता। ओके वैसे हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। You can't think of anything without having a Sikh, having a Christian, having a Hindu साथ में। और हुआ हमारा देश कहाँ से कहाँ आए हम, इकोनॉमिक पावर हैं हम, क्या सिर्फ हिंदुओं ने किया? नहीं। क्या सिर्फ मुसलमानों ने किया? नहीं, ये सब मिलके किया है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए और ये आगे भी जाना है तो ये यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिटी जिस दिन टूटता है उस दिन इंडिया के लिए बहुत 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 डेंजरस टाइम्स है आगे, अगर यूनिटी टूटता है। मेरे हिसाब से हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे खून में सेक्युलरिज्म, इसलिए वो मैं हिंदू की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके खून में है सेक्युलरिज्म। अगर वो भारतवर्ष से पैदा हुआ है तो हमारे खून में, हमारे डीएनए में है सेक्युलरिज्म। तो हम साथ में रहेंगे यार। इसका ये इस्लाम खतरे में या ईसाई खतरे में या हिंदू खतरे में, ये कोई खतरे में नहीं और खतरे में कोई ला भी नहीं सकता। ये इतना छोटा कोई रिलीजन नहीं होता कि कोई एक आदमी चाहे या एक पोलिटिकल पार्टी चाहे तो इस्लाम वो रिलीजन को खतरे में ला सकता
है। जो चर्च का स्टेटमेंट आया उनसे तो यही लगता है कि जैसे उनको लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी तो सब कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट आ रहा है कि भैया त्रिशूल को वोट करो या फिर क्रॉस को वोट करो, दोनों में से एक चुनो। क्या खतरा हो सकता है किसी को?
गलत है वो बात और वो ऐसी नहीं बात करना चाहिए। बट ये सेम ब्रेथ में मैं और एक आपको बोलूं, बीजेपी को भी ये देखना है और जैसे कि जो पॉलिसीज वो कर रहे हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को भी ये देखना है कि लोग जो हैं वो बीजेपी को ऐसा कंसिडर भी ना करें। ओके उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास देखिए गोवा में बीजेपी ठीक ठाक ही कर रहा है, कोई इस क्रिश्चियंस को खतरा नहीं है, गोवा में सब खुशी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गोवा में। ओके परिकर सबको अब ठीक ठाक ही रख रहा है, कोई इशू नहीं हुआ, एक दंगल नहीं हुआ, एक ऐसा इशू नहीं हुआ। मैं ये सेम बात उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बोल सकता बिकॉज उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत पॉलिसीज ऐसी हुई है जो एटलीस्ट साउंड करते हैं कि भाई ये थोड़ा बायस्ड पॉलिसीज है, थोड़ा उतना ओपन पॉलिसीज नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन दैट बींग सेड मैं आपको लिख के देता हूँ, ये जो बात है कि कोई एक 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 अगर एक बीजेपी चाहे इसलिए पॉलिसीज, इसलिए कोई खतरे में, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ना बीजेपी चाह के हो सकता, ना कांग्रेस चाह के हो सकता, ना कोई भी ये दुनिया में चाह के हो सकता है। रिलीजन सेफ है जब तक वो इंडिया में है, जब तक वो इंडियंस है वो सेफ हैं।
ऐसे स्टेटमेंट जो आ रहे हैं कि आप त्रिशूल और क्रॉस में से वेट कीजिए, इसके पीछे किसकी विचारधारा हो सकती है सर? कौन सी पार्टी हो सकती है इसके पीछे? अगर मैं पार्टी कहूँ या अगर ये स्टेटमेंट है, ये विचारधारा क्या है?
देखिए, आप मुझे मालूम है आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज यस, बीजेपी ने ये बोला है कि ये कांग्रेस ने स्प्रेड किया है। मुझे नहीं मालूम, शायद किया होगा, हमें कैसे मालूम कौन किया है कौन नहीं किया है। हम तो वहाँ पर हमारे मतलब यू नो हम तो सिर्फ हियरसे में जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस ने किया तो गलत किया है, अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो करना भी नहीं चाहिए। सो अगर यू नो सो द फैक्ट इज बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। सी द कास्ट पॉलिटिक्स जो है ना, कास्ट पॉलिटिक्स, ये जो नया जो एक मंत्र निकला है कास्ट पॉलिटिक्स का, ओके, और कम्युनल पॉलिटिक्स का, ये हमें बहुत 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 महंगा पड़ सकता है। वो बीजेपी कर रहे हो या कांग्रेस कर रहे हो, दोनों अगर कर रहे हो गलत कर रहा है। बीजेपी ने किया है और कांग्रेस ने भी किया है, दोनों ने किया है। तो मैं कोई बड़ा ये नहीं बोलूंगा कि किया हो एंड ऑल दैट, किया है, लेकिन नहीं करना चाहिए। अब बस, अब हो गया। अब एक तो हम एज वोटर्स, हम ऐसे ऐसे इसमें नहीं गिरना चाहिए कि बस अब बस, बिकॉज हमारे लिए एक सब इम्पॉर्टेंट है।
पर सर, ये हम पत्रकार, हम मीडिया कर्मी जो सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन समय समय पर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आप कम्युनल रंग दिया जा रहा है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अब देश को ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं है? लेकिन हर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हर चुनाव आ रहे हैं, हर पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहा है जो जातिगत आधार पर खेल देता है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए जो कासगंज में हुआ, उसके बाद क्या स्थिति निकल कर आई, अलवर हत्याकांड के बाद क्या स्थिति निकल कर आई, अब जो एक स्टेटमेंट आया है, तो ये विधानसभा चुनाव के पहले क्या जो जा रही है कि लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं?
देखिए, आप उत्तर प्रदेश को एक साइड में रखें तो कम्युनलिज्म थोड़ा कम हुआ है बाकी सारे देश में। गुजरात ने कम्युनलिज्म को एक हिसाब से ना बोला है, जो 99 सीट्स उन लोगों ने जो भाजपा को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है, वो कम्युनलिज्म उन्होंने ना बोला है। कास्टिज्म लेकिन उधर ऊपर आ गया। तो समय डाउन द लाइन, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कम्युनलिज्म जो है ओवरऑल थोड़ी कम हो गई है, कम्युनल दिस थिंग, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। ओके, मैं होप कर रहा हूँ कि ऐसे ही कास्टिज्म भी कम होगा। देखिए, हमें विकास की बात करना चाहिए, हम इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं। 2020 में हमारा ये उद्देश्य था कि हम इकोनॉमिक पावर बने, जो हिसाब से हम जा रहे हैं 2020 में हम नहीं बनने वाले। तो हमारा जो ड्रीम था 2020 में इकोनॉमिक पावर बनने का, वो ड्रीम मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये सब वी शुड बी फोकसिंग ऑन, हमारे जो भूखे हैं 30% लोग हमारे एक्चुअली फुल स्टमक खाना नहीं खाते। ओके, ये लोगों के बारे में हमको सोचना है। ओके, हमारे जो माल न्यूट्रिश बच्चे हैं, इनके बारे में हमको सोचना है। नागालैंड का जो ट्राइबल लोग हैं, अब सिंस हम नागालैंड की बात कर रहे हैं, नागालैंड के जो ट्राइबल डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचना है। नागालैंड का जो एजुकेशन है उसके बारे में सोचना है, हेल्थ उसके बारे में सोचना है। यू नो, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड का ओवरऑल डेवलपमेंट, इसके बारे में हमको सोचना है। रवि, ये सब बिना सोचे, ये सब ना सोचे, हम सोच रहे हैं कि ये कौन सा जात है, ये कौन सा ये है, चर्च को वोट करो, मंदिर को वोट करो, मस्जिद को वोट करो। आप ही सोचे, भूख बढ़ा के चर्च बढ़ा, भगवान का नाम भूखे पेट में भी बिना तब आता है कि भूखे, फूड इज बिगर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। हमको लोगों को यू नो वी हैव टू गिव फूड एंड शेल्टर टू पीपल फर्स्ट, उसके बारे में सोचना चाहिए। और वो सबसे ज्यादा कास्ट या कम्युनलिज्म नहीं दे सकता, फूड और शेल्टर सिर्फ और सिर्फ विकास दे सकता है।
तो सर, क्या लगता है सर आपको, जब चुनाव होंगे 27 फरवरी को, तो नागालैंड की राजनीति चुनाव के बाद क्या राजनीतिक समीकरण बनकर उभरेगी?
सी, अभी बोलना बहुत बहुत अर्ली है। बीजेपी बहुत सीरियस दिखाई दे रही है नागालैंड में, बीजेपी के सपोर्ट वाली सरकार है अभी करंटली नागालैंड में, सो बीजेपी काफ़ी सीरियस दिखाई दे रही है नागालैंड में। बट अभी आप कुछ कहना, एटलीस्ट मुझे अब कुछ नहीं कहना, बिकॉज मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए टू एक्चुअली कम आउट एंड से व्हाट इज हैपनिंग, थोड़ा और रिसर्च हमारा जो पुख्ता हो तब जाके बात करने में मज़ा आएगा। ये तो नहीं तो ये ऐसे ही बोलने वाली बात होगी।
चलिए, तो मज़ा उन राजनेताओं को भी आ रहा है, उन लोगों को भी आ रहा है जो कम्युनल रंग दे रहे हैं। त्रिशूल को वोट कीजिए या फिर आप क्रॉस को वोट कीजिए, इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव सर पर हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, टीम राहुल गांधी, और जो स्थानीय नेतृत्व है वह पूरी जुगत में लगा है कि नागालैंड की कमान उनके हाथ में लगे। लेकिन 27 फरवरी जब चुनाव होंगे और जब नतीजे आएंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। बने रहिए SW News के साथ, मैं हूं रविशंकर शर्मा। नमस्कार।